अगर कोई भी इम्पार्शल होना जरूरी है जी, चूंकि नेचुरली लाइकिंग्स डिसलाइकिंग प्रेजुडिसेस ये सब कुछ होते हैं, हम इंसान है जी, लेकिन अगर आप एकेडमिकली बात करें तो ये शोर, ये जो सवाल उठाया है ना जी, और इसमें बहुत बड़ा पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसने पाकिस्तान की कम से कम जो सियासी मामलात थे ड्राइंग रूम की गपशप के अलावा कभी उसमें अमलन पार्टिसिपेट नहीं था किया, आज वो निकल खड़े हुए हैं जी। अब उसका कल को बेनिफिशरी इमरान खान होता है नहीं होता, को और होता है, इतना मैं समझ सकता हूं कि आप पाकिस्तान की अवामोन्नास ये सवाल करेगी। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अगर आप पाकिस्तान में डेफेमेशन और करप्शन से निकल के आए हुए हैं, मेरा ख्याल है जहां कहीं दुनिया में कोई पाकिस्तानी आपके सामने आएगा तो आप चल नहीं सकेंगे उसके सामने जी, आप रास्ता बदलेंगे जी। ये जो शऊर आज पाकिस्तान की अवामोन्नास ने जिम्मेदारी के साथ जी, जिम्मेदारी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के वक्त भी एक दफा आवाम निकली थी, लेकिन वो निकलना कुछ और था, स्कूल पे कब्जा कर लो, फैक्ट्री पे कब्जा कर लो, आई डोंट वांट टू हर्ट एनी बडी फ्रॉम जिसके पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन ये फैक्ट है, वो मार्क सूट का था जी। ये शऊर के साथ है, आपके सामने है जी कि 24 घंटे में वो कॉल देता है, 24 घंटे में वो कॉल देता है, 10 लाख का मजमा करता है, शीर्षकार बच्चे लोग लेके जाते हैं मजमे में, एक मिसक्रिएंट की मिसाल आपको मिलती है, हालांकि बासकात एडमिनिस्ट्रेटिवली हो जाता है। आप वो देखें सिर्फ जो जलसों की मैनेजमेंट है इमरान खान, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि ये पाकिस्तान के शोर का एक टेस्ट है, सिर्फ जलसे का एनालिसिस आप क्रॉस सेक्शन करें, इट स्पीक्स द कैरेक्टर ऑफ द नेशन जी। बुलहदा बात है कि उसमें पीटीआई से मुंसलिक लोग जेन के आते हैं डेफिनेटली जी, चूंकि उसका है, लेकिन वो पाकिस्तानी है जी, और उसमें बहुत बड़ा चंक जिसमें मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि इलेक्शन का दिन छुट्टी का दिन होता था इनके लिए, वोट भी नहीं थे डालते,
वोट टर्न आउट बहुत कम था।
आपके सामने ये जो 20 सीटें हैं पंजाब की, इनका तजिया करके देख लीजिए आप, बेशक एकेडमिक एनालिसिस कीजिए जी, कि अपनी जगह पे शॉर्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस एक्सटेंट तक कर सकती थी उन्होंने की है, ये वो एडिशनल जो बल्क आया है वो दे हैव मेड द डिफरेंस जी। क्यों नहीं कराते बाकी 8-10 जो पंजाब के हल्के हैं इलेक्शन जी, दे नो इट वेरी वेल जी, जो पब्लिक सेंटिमेंट है। ये जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं हमारे पाकिस्तान के सफर के मुख्तलिफ अदवार थे, हमने बड़ी गलतियां की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच ऑप्टोमिस्टिक जी, वेरी मच ऑप्टोमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।
सर आपने अभी एक लफ्ज कहा कि पाकिस्तान की आर्मी में ये है कि जाहिर है पाकिस्तान का सबसे स्ट्रांगेस्ट इदारा जो हमेशा से हमेशा रहेगा दैट इज आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के बारे में आपने कहा कि उनका मैंडेट ये है कि नेवर टू इंटरफेयर इन पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, या उनमें उसमें ना आए। वेयर एज आज अगर मैं देखती हूँ तो जो अपॉइंटमेंट हुई हैं वो, इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट मी, मैं इसीलिए आप जैसे शख्स से बात करना चाहती हूँ कि इट माइट बी पॉसिबल कि मैंने न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन हो। आर्मी की इंटरवेंशन जो लोगों को कन्फाइंड किया गया बिल्डिंग्स में, फिर जो वोट डाले गए और फिर जो जिन लोगों के सपोर्ट गवर्नमेंट की गई, जहां पर अदालत को रात को 12-1 बजे तक भी खुलवाया गया, आखिर डंडे ने काम तो किया था ना, तो व्हाई डिड, मेरा पहले दिन से सिर्फ एक ही रोना है और ये अप्रैल से ये रोना शुरू हुआ है कि कैसे मेरा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कि पाकिस्तान का रखवाला है कैन अपॉइंट समबडी, बिल्कुल साहब लेके आए, नवाज शरीफ को लेके आए, जिसको मर्जी लेके आए, मगर समबडी विदाउट द लेट देम क्लीन देम सेल्फ्स, ठीक है, प्रूव कर लेने दें कि इनके ऊपर आज जब प्रूव हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस निकल गए, हमजा भी निकल गए, शहबाज भी निकल गए, तो चलो जी ठीक है, मगर जब तक तो ये केसेस ओपन थे कैसे आप उनको, कैसे आप मरियम साहिबा, मेरे पास कोई पोजीशन भी नहीं, मेरे पास कोई सीट भी नहीं है, मगर मैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं हर शख्स के लिए वो लफ्ज भी इस्तेमाल करती हूं, मैंने पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए जो रोल मॉडल बनाए कि नंगी तस्वीरें बना के बांट दो ऑडियोज वीडियोज को, क्योंकि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग तो बहुत सारे हैं ना, पाकिस्तान में
पोटेंशियल
तो बहुत है, तो यहाँ पे आर्मी ने सपोर्ट किया, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करें,
बिल्कुल आपकी बात,
क्यों किया
यहाँ पे थोड़ा सा जी, आपकी आपने जो जेर बहस बात लाई और जिसकी निशानदेही की, वो जो इवेंट्स हैं वो सब कुछ बिल्कुल उससे कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता, फैक्ट्स हैं जी, उसे कौन डिनाई कर सकता है। यहां सिर्फ मैं डिस्टिंग्विश करूंगा ये एक चीज में जी कि अस्करी की आदत और पूरी हमारी जो अस्करी ताकत है जी, इसको जरूर डिस्टिंग्विश कीजिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी फौज में जो लीडिंग पर्सनैलिटी को बाकी अफवाज से अलग करना जी, बहुत जरूरी।
मैं गुजारिश करता हूं, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। सोचिए कतन हम किसी को भी जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ ठीक नहीं किया, चाहे वो फौज से है चाहे सिविल से, हम उसको एग्जोनरेट नहीं कर सकते उसकी जिम्मेदारी से जी, बिल्कुल ये बारह की बात, उस पर हम आ जाते हैं बात पे। लेकिन जब उसको हम टोटल फौज कहते हैं तो मैं भी आप ही के सामने सवाल रखता हूं कि तकरीबन मुझे आप एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख से ऊपर है, फिर रिजर्व है, फिर एयरफोर्स है, फिर आर्मी है। जब हम फौज कहते हैं और जब हम ये राय बनाते हैं, क्या हमने सोचा कि -42 के जिस इग्लू में सियाचिन में हमारा सिपाही बैठ के हमारा दिफा कर रहा है, जब हम फौज कहते हैं तो वो भी शामिल हो जाता है इसमें। आपने कभी सोचा कि
मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगी, सियाचिन में जब जंग भी हुई थी तो पाकिस्तान आर्मी विनिंग पोजीशन में थी। वो तो जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई थी, जब नवाज शरीफ साहब आए थे, हकायक को पढ़ के देखे, तब हम लॉस की तरफ चले थे।
ये आप मैं खाली कारगिल की तरफ रेफर कर रही हैं जी, उस पे आते हैं, उस पे बात पे बात। अब आप ये मैं कह रहा हूं कि उसी एयरफोर्स के पायलट को जो 52-55 डिग्री सेंटीग्रेड में शोरकोट सरगोधा में कॉकपिट स्टैंड बैक करता होता है हमारी दफाओं के लिए जी, हमारे दफा के लिए, जो रात को हमारे लिए जागते हैं, वो सब मरीन में जो समंदर की तह में पता नहीं कहां पे कितने हफ्तों से बैठे हुए हैं जी, वो भी सब फौज है जी। और किस अंदाज में पाकिस्तान का दफा कर रहे हैं जी, ये पुलवामा वाला अगर आप वाकये का एनालिसिस करें, इसका आज तजिया दुनिया के जो बेहतरीन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है वहां तजिया किया गया है। तो ये भी तो वही फौज है ना जी। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा जी कि हम ये डिस्टिंग्विश जरूर करें जी कि वो जो फौज, और मैं एक तरफ से देखा जाए तो एक नौकरी है, हर कोई कहता है कि इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी, लेकिन ऐसे नहीं है जी। मैंने भी ये वर्दी पहनी हुई है। हमारी फौज में मैं 90% से ज्यादा कह सकता हूं कि लोगों के जो जज्बात हैं, जो कौमियत का जज्बात है, इट इज फार फार बियॉन्ड द कॉल ऑफ दिस ड्यूटी जी। दे हैव प्लेज्ड देयर लाइफ अपनी हथेली पे जी,
ये जज्बा ही है जो उनको उस जगह पे लेके चलता।
तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब हम वो बात करें, इस किस्म के अगर इवेंट्स एपिसोड आते भी हैं या फौज की हायरार्की या कमांड की तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशन होती भी हैं, तो हम उनको उन गलतियों को हम दरगुजर ना करें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जी कि सबको ना लपेट लें उसके अंदर, ये हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी। क्योंकि मैं आपको हकीकत बताता हूं जी, आपने कभी एक तजिया किया है ये क्या वजह है कि इसी पाकिस्तान में हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी, चाहे जुडिशरी लेने, ये दुनिया की 148 या 58, सब 130 से नीचे में आते हैं। ये क्या वजह है कि हमारे ये तीन इदारे टॉप 10 में हैं? और ये मैं नहीं कह रहा
सर, हमारा सिर्फ आर्मी टॉप 10 में, हमारे जुडिशरी तो एक
नहीं, नहीं उसके जुडिशरी नहीं, मैं तो जब कह रहा हूँ तीन में गिन रहा हूँ, मैं फौज के तीन में, एयरफोर्स आर्मी नेवी इनकी बात करूँ, जुडिशरी
की फर्स्ट 10 में आ रहे हैं
मैं, और मैं कहूँ कि बाकी सब देखें, ये कोई इंपोर्टेड तो नहीं है, ये उसी माँ बाप के पेट की औलाद है,
उसी मुल्क की हुई जी,
और एक ही चीज है जी फर्क पूरा। अगर आप इसका, अगर मुझे आप कहें ना कि 100 बातों की बात एक में मैं पाबंद कर दूं, इस इदारे में मेरिट है जी। सिटिंग एयरफोर्स चीफ का बच्चा आईएसएस भी नहीं क्वालिफाई कर सकता जी, सिटिंग एयरफोर्स चीफ का बच्चा सस्पेंड हो जाता है जी
फ्लाइंग। अगर जो एयरफोर्स चीफ की बेटी का सुसर है वो भी चीफ जनरल है, मतलब मैं जब रिश्ते देखती हूँ ना,
नहीं देखिए वो
ये क्या वजह है,
रिश्ते उनके आपस में होने तो एक बड़ी जाती सी बात हो गई, नहीं कि आप अगर कॉलीग्स हैं और मिलिट्री में सर्विसेज में एक दूसरे को जानते हो, रिश्ते हो जाना तो कैसी मेरा ख्याल है, एक उसमें मेरा ख्याल है कोई एतराज किया, ये सिर्फ जो आपका था ना,
आपने बड़ी बड़ी, और मैंने इसको कवर भी किया था कि पहली 10 पोजीशंस में पाकिस्तान आर्मी के तीनों डिपार्टमेंट्स का, जैसे आपने किया,
आप यूनाइटेड, मैं गुस्ताखी करूँ आपके बाद, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ी जो पीस कीपिंग ग्रुप से हमारी आर्मी का
कवर किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोग्राम था, मुझे अफसोस है आप उसमें नहीं थे।
मैं गालिबन यहाँ पे होंगे जी,
सितंबर का प्रोग्राम था, बैंक्वेट हॉल, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें मैंने ये कवर किया था, मगर मैं क्विक टाइम की वजह से, क्योंकि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट नाउ,
ठीक है जी।
क्या वजह है कि आर्मी के जो, मुझे पता है इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, जब एक जनरल को कोई पॉलिटिशियन एक्सटेंशन देता है या उसको उसकी फेवर मिल रही होती है टू गेट दैट पोजीशन, تو باقی جرنلز یا آبجیکشن وہاں کیوں نہیں آتی؟
دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں اصولی بات آپ نے گو مجھے سوال نہیں کیا لیکن میں اس کا اظہار ضرور کروں گا، ان پرنسپل ایکسٹینشن قطن نہیں ہونی چاہیے، قطن نہیں ہونی چاہیے انلیس کوئی نیشنل سیکیورٹی کی اتنی ایکسٹریم ایکسیپشن ہو اور اس کا بھی ایک شخص کا فیصلہ نہ ہو، وہ بھی کوئی کمیٹی ہو یا کوئی جی ایسے بہت ایکسیپشن جی
ایٹم بم پھٹ گیا تو
اب آپ کے دوسرے سوال کا ایسا جو آپ کا اصل سوال تھا بہت ضروری سوال ہے جی عارف بہن، یہاں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جی، ہماری فوج کا جو پروفیشنلزم ہے اس میں ویریس ایسپیکٹس ہیں، اس کے آپ سمجھے کہ ویریس فیدرز ان دا کیپ ہیں ہمارے دفاعی اداروں کے، ان میں سے ایک جو بہت بڑی بات ہے وہ ہے ریسپیکٹ فار کمانڈ جی، ابھی آپ نے ایک بات فرمائی نا جی کہ یا ہے تو وہ کیوں نہیں اعتراض کرتے،
موسٹ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن،
یہ میں آپ کو ابھی بھی گزارش کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم نے کتنی بڑی قیمت دی ہے کسی ایک کے فیصلے کی، اس کے باوجود میں کبھی کہوں گا، اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ نہیں یونیفیکیشن آف کمانڈ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان،
ایون دو ایون کمانڈر ڈز اے رانگ تھنگ
ان اسپائٹ آف دس فیکٹ،
کمانڈر ڈز اے
جی یہ اس پہ پروگرام، یہ میں آپ کو اس کا جو افیکٹ ہے اگر یہ کمانڈ ڈیوائڈ ہو خدا نہ خواستہ، اس کا جو افیکٹ
ٹمارو یو کین بی ہولڈ اکاؤنٹبل فار جرمنی میں کیا ہوا تھا
وہ بالکل،
آپ نے وہ جو آپ کے وہ سیلز تھے آج 102 سال کے بندے کو سزا کر دیا کہ تم نے کیوں انکار نہیں کیا،
یہ ایک اور سوال ہے آپ کا کہ وین ہی ریلنکوشز ہز آفس، ابھی آپ نے کہا نا بعد میں، یہ بعد میں ایک اور بات ہے، جب وہ ریلنکوش کرتا ہے اپنا آفس اس کے بعد اس کا جو بھی دفاعی انداز ہے اسمبلی ٹرائل یا وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن یہ میں آپ کو چونکہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے جی اور اس پہ میرا خیال ہے اس پروگرام میں
چیف ڈز رانگ موو،
نہیں میں یہ نہیں کہ اٹ میٹرز، اٹ سرٹلی میٹرز، لیکن میں کہتا ہوں لیکن جو عرف بہن میں آپ کو اگین فار فراڈ پاکستان نیشنل سیکیورٹی یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ اللہ نہ کرے اس کے باوجود ہماری فوج کے ڈیسیجن میکنگ میں کبھی کوئی دراڑ آئے گی،
مگر میں یہ کہہ رہی ہوں دیر مسٹ بی اے گروپ آف پیپل جی ایچ کیو میں جو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے آن دس از ایکسٹینشن آن پولیٹیکل ایجنڈا ٹو گیو فیورز ٹو سم بن
جی،
سو دیٹ پروسیجر مسٹ بی سٹاپ،
اچھا اب آئیے دوسرا میں اسی کا جو دوسرا سلسلے کا حصہ ہے، آپ نے کیسے یہ پریزیوم کیا کہ اس قسم کے فیصلوں کے خلاف ایکسپریشن یا دوسری سٹیج اس کی ایکسٹریم ہے ریزینٹمنٹ نہیں ہوتی؟
اچھا اندر ہوتی ہے
جی، دیکھیں یہی تو ایک ڈیکورم ہے ہماری فوج کا کہ اگر بات بھی ہے تو بھرم ہے جی، اور میں اس کے باوجود کہتا ہوں آپ کی اس بات کے اور میں آپ کے جذبات سمجھ رہا ہوں کہ جب میں پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہوں، دیکھیں اس وقت دنیا کی ایک ہی واحد چیز آپ کے پاس بچی ہوئی ہے ادارے میں جی، اور دنیا کی پوری کوشش ہے یہ کس طرح ایک دفعہ توڑے اس میں دراڑ ڈلے، یہ وہ ہوتا ہے نا کوس، وہ سارے مسئلے گھر کے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ایسے مسائل ہوتے ہیں نہیں ابھی بھی الحمدللہ کوئی اس میں یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا الحمدللہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی الحمدللہ، آپ وہ چونکہ ہائک بہت زیادہ ہے اب جی جو مرضی پوچھیے جی،
کل تک جو لوگ حسین حقانی روٹ ایوری تھنگ بیڈ اباؤٹ پاکستان آرمی،
کوئی شک نہیں جی،
پاکستان کے ایک ایک پولیٹیشین کو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا جو اس وقت اقتدار میں ہے، دے سیڈ ایوری تھنگ بیڈ اباؤٹ آرمی،
دیکھیے بالکل کوئی شک نہیں،
ورسٹ پاسبل ورڈز کہ گھسیٹنے تک کی بات کی، میں کو باڑوں سے باندھنے کی بات کی،
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ
دے آر گیون پوزیشن،
تھینک یو، آپ ذرا اسی ابھی آپ نے چونکہ حوالہ دی ہے، اسی شخصیت کو ہم نے پاکستان کا سفیر بنایا تھا امریکہ میں، سفیر کون ہوتا ہے جی، ریپرزینٹس دا کنٹری،
دیٹ واز اے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ،
اب دیکھتے اب میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیز انفارچونیٹلی یہ ہوئی ہیں اور یہ ہیں اور اب تو اتنی آبویس ہو گئی ہیں، یہ آج آپ کو ایک جو یہ جو سوشل میڈیا یا جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں یا جس کو ففتھ جنریشن، اس کے اگینسٹ بھی بہت ہیں اور فور بھی بہت ہیں، میں آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم بتاتا ہوں کہ آدمی اس میں لیورن اور ڈسلوژن بھی بہت ہوتا ہے، آدمی مین عوام الناس، اور اس میں ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگوں کی اویئرنیس اور ایکسیس آف انفارمیشن بھی مل رہی ہے، دیکھیں اب بہت یہ بات ہو گئی ہے کہ کھل کے آئے بات، دیکھیں فار ایگزامپل کتنے جرنلسٹ ہیں جن کو روٹین کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا گیا پچھلے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں کتنے جرنلسٹ ہیں ایکسپوز ہو کے کہاں رہ گئے، کیا حیثیت ہے، क्या उनकी आज वो क्या कहते हैं
पीटीआई गई है दे आर इन पोजीशन
नहीं
तलत हुसैन
बिल्कुल
पोजीशन
देखिए दे विल रिमेन इन पोजीशन देखिए हमेशा जो कॉन्ट्रोडिक्टरी या वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स कभी भी मैं आपसे एक थोड़ी सी बात कहता हूं क्या हजूर पाक के वक्त सारे मोमिन हो गए थे या जिन्होंने कलमा भी कबूल कर लिया था देखिए अल्लाह पाक का निजाम है फॉरन अगेंस्ट हमेशा रहेगा हर दुनिया के वो नबी थे ना अल्लाह पाक के एग्जैक्टली लेकिन गुजारिश यह है कि पहले कैप की जाती थी बहुत सारी इशू से अब खुला छोड़ दिया गया जी आप मैं अब नाम नहीं लेना चाहता बिल्कुल हैसियत क्या रह गई है जी इनका वो जो होता है आपका फॉर्मूला ए टाइम या वो उनमें देख लें क्या वो लिसंस टू देम टके की हैसियत नहीं इनकी रह गई
सर लिसन तो बहुत करते
नहीं ओके वो है नहीं बहुत नहीं अगर आप रिलेटिवली देखें जी रिलेटिव कंपैरिजन में करें ना कि कितना अब वो फिर बात आ जाएगी नाम बोलने पड़ जाएंगे कितने लोग ऐसे हैं जिनको कितना और कितना पेडेस्टल था उनका जी लेकिन जब एक्सपोज हुए तो खुल के आपके सामने आ गए उसमें डेफिनेटली कुछ कुछ को आप ये भी कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकली उनके साथ ज्यादा अलाइंड है और ये पॉलिटिकली इनके साथ अलाइंड है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूट्रल बात भी करते हैं
चलिए मैं आज यहीं पे कंक्लूड करती हूँ तो आपने एक तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ आर्मी में रिफॉर्म्स आने की जरूरत है कौन लाएगा ये रिफॉर्म्स
आर्मी में जरा वजाहत की करेंगी किस
रिफॉर्म्स आने की जरूरत है पहली बात तो ये कि ये जो सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इंटरवेंशन इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिशियंस के साथ होना
जी, जी, जी।
तो ये अगर तब्दीली हो कि आर्मी एक ऐसा इदारा है ये अगर तब्दीली आए तो कौन लेके आए
हमने पहले इस पे बात की है सब्जेक्ट पे देखें इसका शायद मेरे से इट नॉट बी अ पॉपुलर कमेंट जो मैं अब कहने लगा हूं मैंने पहले भी इसका इशारतन जिक्र किया है इसका ज्यादातर रोल जो है वो पाकिस्तान के इसका हल इस मसले का हल पाकिस्तान के सियासतदानों के पास है अगर मैं परसेंटेज गालिबन 70% उनके पास है 30% इनके पास है
आर्मी के पास
थी पहली बात जब आपने रिफॉर्म कहा तो शायद ये रोल ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन टू पॉलिटिक्स इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो आते हैं तो उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लॉबिंग बात एक से करें दो को कीप देम अप देयर स्लीव ये सब कुछ होता है आई थिंक ये वेरी सीरियसली ये मैं भी कोई मेरे आर्मी आज भी जान देने को तैयार हूं मैं एक्स रिटायर्ड एयरफोर्स हूं लेकिन पाकिस्तान ने कॉल दी तो आज भी हमारी जान हाजिर है जी पाकिस्तान के लिए लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जी कि ये जो 6 महीने का पाकिस्तान का सफर है अप्रैल ऑनवर्ड ये हर एक के लिए बहुत बड़ी तालीम और इस्लाह है और हमारे जो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो अभी भी इस्लाह नहीं
की अभी मैं आता हूं जी मैं देखिए कुछ भी जो चीजें हैं ना आप जब आप ये चीजें चल रही होती हैं ना जी तो आज की जो मौजूदा सूरत हाल है ये डेरिवेटिव है पास्ट का दिस नथिंग लाइक स्विच ऑन और स्विच ऑफ हालात की एक कंटिन्यूएशन होती है एक लेगेसी होती है आई एम श्योर मैं बहुत हद तक समझता हूं कि हमारे ये जो इदारे हैं बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं मिलिट्री स्टेट टर्म्स में अगर बात की जाए आई एम श्योर देर हैज टू बी और एटलीस्ट देर शुड बी अ वेरी सीरियस रीविजिट टू देयर रोल एंड टू देयर मैकेनिक्स एंड टू देयर फिलोसफीज ऑफ हैंडलिंग दिस सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स
इज देयर एनी सिस्टम इनसाइड द आर्मी और इनसाइड द एस्टेब्लिशमेंट हु कैन इवेल्युएट इट एंड ब्रिंग अ चेंज सो दैट पॉलिटिशियन जो तो करोड़ करोड़ दो दो करोड़ की रिश्वतें लेके लोगों की को क्या कहते हैं वो क्रॉस कराते हैं प्लेटफॉर्म क्रॉस कराते हैं तो ये आर्मी को प्लेटफॉर्म ना क्रॉस कराएं जनरल्स को
मैं गुजारिश करता हूं कि देखें अगेन अब अगर पॉलिटिशियन पैसे लेते हैं या कुछ मेरे ख्याल इसका हाल फौज के पास नहीं इसका हाल पॉलिटिशियंस के पास है और पार्टी पे और अवाम पे मैं मुकम्मल कर दूसरा आपने फरमाया ना फौज का जी आईएसआई के अंदर बकायदा पॉलिटिकल सेल है जी जो सारे मैनेज करता है उनके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन डेटा स्टेटिस्टिक्स सब कुछ है दे हैव एवरीथिंग ऑन एवरीवन इसमें कोई शक नहीं है अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो बात आपने पहले की थी जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है जहां पे मैंने उसके जवाब में गुजारिश आपको की थी कि आई थिंक द इंस्टीट्यूशन नीड्स टू वेरी वेरी सीरियसली रीविजिट द होल फिलॉसफी एंड कॉन्डक्ट ऑफ मैनेजिंग एंड हैंडलिंग दीज अफेयर्स जी ये जो 6 महीने का एरा हमारा गुजरा है जी ये एकेडेमिकली एक बड़ा कंडेंस पीरियड है जिसमें इतना कुछ हुआ है और ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है दैट सेंटिमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड ये उनको भी पता है कि वो क्या करना चाहते थे और क्या क्या रुकावटें उनकी बनी है और सबसे बड़ी रुकावट बनी है ये पब्लिक सेंटिमेंट की
सर भी आपने शुड कहा और शुड हैव कहा विल इट बी और
ये देखिए मैं वही बात है नजूमी या फिलोसफर तो मैं हूं नहीं होना मैं ये कहूंगा कि क्या होना चाहिए मेरा ख्याल होना चाहिए जी होना क्योंकि
तो तनवीर साहब
जी जी तनवीर,
इसका हल क्या है? क्या इदारों के पास, पॉलिटिकल के पास हल है? वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उनके अपने मिजाज में नहीं है, वो करप्शन करते रहते हैं। तो ये जो 6 महीने से हल जो हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक लीडरशिप आएगी जो कि करेगी, और उसके लिए जो जो लोग हैं ना, लोगों को उसके लिए एक तरह से आपको क्या नाम है, माली तौर पे नहीं, आपको आपको क्या नाम है,
लॉबिंग करना होगी,
लॉबिंग नहीं,
सैक्रिफाइस,
और उसके लिए जान, आपको जान देनी पड़ेगी। जब तक जान नहीं दी जाती ना, कोई हल नहीं, करप्शन का हल कहीं भी नहीं निकल सकता जब तक के जान नहीं दी जाएगी।
जी सर,
जब जान दी जाएगी जभी होगा।
जी जी, जो आपने बात फरमाई ना जी, अगर आप मेरा जवाब इसमें मांगते हैं तो मैं इसको करप्शन को एक मिनट के लिए एक साइड पे कर देते हैं जी, एक मिनट उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बाद में देखें, दुनिया की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो इसके हल 2 तरीके से हैं। एक तो फिर इनकलाबी तरीका होता है, दूसरा आपका एवोल्यूशनरी तरीका होता है। तकरीबन ये 2 ही तरीके हैं। खुदा न खास्ता जिस तरफ ये पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या इमरान खान कॉल देगा, मैं इतना कह सकता हूँ अल्लाह करे कि कॉल ना देनी पड़े, ना आवाज़ देनी पड़े कॉल की। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कहीं अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, चूंकि इस वक्त जो पब्लिक सेंटीमेंट द वे इट्स ऊजिंग आउट, मैं तो कहूंगा कि इमरान खान की बड़ी मेच्योरिटी है उसकी लीडरशिप के, ही इज नॉट एक्सप्लॉयटिंग इट जी। किसी ने मुझे कहा, ये कल परसों एक बात हुई थी इसी से चूंकि रेलिवेंट है, उसने कहा कि अगर इमरान खान अंदर हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा उसको बाहर,
सारी कौम बाहर है।
नहीं, मैंने कहा उसको बाहर निकाल के तो देख लिया क्या हुआ है, अब उसको जो अंदर करके देख लिया, तो मैंने कहा जो डिसीजन मेकर हैं वो शुक्र करें इस चीज का कि अभी वो इन कम्युनिकेशन है और उसके कहने पे लोग चल रहे हैं। अगर ये कम्युनिकेशन टूटी, अगर कौम मादर पितर आजाद हुई, तो ये फिर सिविल डिसोबीडियंस, उसका दैट्स द पोलाइटेस्ट वर्ड आई कैन यूज, कि ये फिर चीज सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएगी, एंड दैट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जी, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।
सर, आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी आज, एक वो बहुत अच्छा लगा मुझे बात करना, मगर जिसे कहते हैं ना हमारा बात करने वाला, उसका IQ लेवल यहाँ था, probably I was not that prepared for, मैं एक्सेप्ट
नहीं, you are being very very humble about it जी,
I mean it के, और मैं आपसे दोबारा मुलाकात लाजमी कर रहा हूँ। तारिक भाई, क्विक आप,
मैं ये जो कायद आजम के हवाले से बात करी थी ना, ना तोप ना तलवार ना बंदूक ना भाला, सच्चाई के अनमोल उसूलों का संभाला, मारा वो तूने दांव के दुनिया भी कई मान, ए कायद आजम तेरा एहसान है ऐसा। इसी चीज के लिए इमरान खान भी काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें कामयाब हो जाएगा।
इमरान खान कामयाब नहीं होंगे क्या, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, इमरान खान जब हम कहते हैं तो शख्सियत बेस्ट हो जाती है जी। चीज इमरान खान को अल्लाह ताला, मेरे चूंकि है सेंटीमेंट है, लेकिन मेरे इस किस्म का सेंटीमेंट है कि वो जियालाइज्म वाला नहीं, मैं जो गलत है उसको भी कहता हूँ, जो सही है उसको भी कहता हूँ, बट मैं ये बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि अमंगस्ट द गिवन चॉइसेस पाकिस्तान की अगर लीडरशिप का तजिया किया जाए तो इमरान खान इज द बेस्ट आंसर जी। सेल्फलेस है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, कोई उसका सक्सेसर नहीं,
जो कुछ कर रहा है कुछ भी नहीं ना कर सके। कुरान में मैंने पढ़ा था और मैं कि कौम में ना बाजों का तारीख भाई, जब किसी कुछ नहीं ना पता उसके किरदार के ऊपर आ जाते हैं, और इस वक्त जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए आवाज के उतार चढ़ाव से वो जो करेक्टर असैसिनेशन पे आ गए हैं ना, वहां पे बड़ा
मेरे ख्याल आरफा बहन कर लें, करके मैं कहता हूँ करें आप, देखिए इट्स वेरी इंटरेस्ट, जो मैंने कहा ना ये 6 महीने पे आप एक प्रोग्राम कीजिए सिर्फ इस 6 महीने के एनालिसिस पे, बहुत अच्छा है। लेट देम एग्जॉस्ट आउट, लेट देम एग्जॉस्ट आउट ये सब कुछ। देखें मैं अब लिविंग साइड एवरीथिंग एल्स, वोंट इट दिस बी एन एग्नी फॉर एनी कंट्री? 2 मिनट की तजिया कीजिए, अ सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज ओन गवर्नमेंट एब्सकॉन्ड्स फ्रॉम द कंट्री विद द कनाइवेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देन इन एब्सेंशिया ही गेट सेलेक्टेड अ सेनेटर इन एब्सेंशिया है जी, और उसके बाद सिचुएशन क्या,
देखिए वापस आता है तो उसको पूरी तनख्वाह दे दी जाती।
मैं कहता हूँ बहुत, आज पाकिस्तान की अवामुन्नास में यह सवाल उठ गया ना जी, इंशाल्लाह आप देखिएगा اسی لیے میں نے ایک پہلے گزارش کی کہ جب ہم نے جن حالات کا تجزیہ کیا وہ ماضی کو مد نظر سے رکھا, اور میں نے کہا تھا یہ جو 6 مہینے اور آگے
دوبارہ میں دعوت دوں گی اور میں ہم ڈیفینیٹلی آپ کی بات کرائیں گے, اور اس 6 مہینے کا تجزیہ آپ ہی اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے. اور جناب تنویر عوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, آپ نے جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی ممبر شپ ہے, آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹ ایسوسیشن کے ساتھ, اسلام آباد کلب کے ساتھ ہیں, پی ای ایف گولف کلب اسلام آباد کے ساتھ ہیں. آپ نے تقریباً 35 سال جو ہے وہ سول اینڈ ملٹری ایویشن کی سروسز میں گزارے ہیں, آپ پولیٹیکلی بہت قریب ہیں, اکیڈیمکلی اگر میں دیکھوں بہت کمال, اور پاکستان کا بہترین ادارہ پاکستان ایئر فورس, ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوشن. بلکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے اگلی جو ملاقات ہو وہ میں دو اعلیٰ دماغوں کے درمیان, آپ کے درمیان اور کیا نام ہے ہمارے دھواں کے جو ہیں, جلدی سے نام بتاؤ, اشر عظیم, اشر عظیم اور آپ دونوں کو
ماشاءاللہ, آپ کی مہربانی,
میں بہت نالائق انسان آپ کے لحاظ سے, مگر انشاءاللہ آئندہ ملاقات. سر آپ کا بہت شکریہ,
ویری گریٹفل آرفا بہن, ویری گریٹفل.
بالوں کا اسٹائل بہت پیارا, کیا سالٹ اینڈ پیپر,
ماشاء اللہ
طارق حسین, ماشاء اللہ میرے بہت پیارے پپو بھائی. اور سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز و باز, چند ایک اسپانسرز ول کم بیک, میرے ساتھ آپ اسی طرح سے رہیے گا. اس کے فوراً بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گی محترمہ شازیہ صاحبہ, اور شازیہ صاحبہ سے بات چیت آپ سنیے گا. جی ماجد بھائی,
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
سٹی آف برامٹن کی جانب سے ایک پیغام, کیا آپ 24 اکتوبر کو 2022 کے میونسپل اور اسکول بورڈ الیکشن والے دن مصروف ہوں گے؟ اپنا ووٹ جلدی دیں, ایڈوانس ووٹ کی تاریخ 7, 8, 9, 14, 15 اکتوبر ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کی تمام معلومات ووٹنگ سے پہلے ووٹرز لسٹ میں درست ہوں. ووٹرز کی اہلیات, پولنگ اسٹیشن کی لوکیشن, ووٹنگ لسٹ اور دیگر معلومات کے لیے وزٹ کریں brampton.ca/brampton-votes.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدان دا بھی چلاونے ہو, مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا quickcontractlube.com. QTL, because we care.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نوں ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس اینڈ ایس لوئرز کو انہاں سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لے لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا سلاح لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نوں کال کرو 416-655-2000.
ٹرک اور ٹریٹ, اس ہیلوئین سٹی آف برامٹن کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے 14 سے 29 اکتوبر سلیکٹ سٹی آف برامٹن ریکریشن سینٹر پر فرائٹ نائٹ کا انتظام کیا ہے. ان سرگرمیوں میں بلون آرٹسٹ, ایئر برش ٹیٹوز, مارش میلو روسٹنگ اور بہت کچھ. آئیے اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنا فری ٹریٹ ایکسیسیبلٹی لان سائن لے کر جائیں. دس ہیلوئین میک ٹرک اینڈ ٹریٹ ایکسیسیبل ٹو آل. مزید جانیے brampton.ca/frightnight.
Encyclomedia te Nashri Films di peshkash, The Legend of Maula Jatt.
Madan Jatt sir jhuka ke maafi mangna le dine, sir utha ke ek jana le di hundi hai.
The Legend of Maula Jatt featuring Fawad Khan, Hamza Ali Abbasi, Mahira Khan te Humaima Malik, nirdeshan Bilal Nashri. 13 October to tuhade nazdiki cinema ch, A Movie Goers Entertainment release.
پال آ گیا, 30 سیکنڈ کا سما تھوڑا ہے, एक लंबी सूची सुनान लई कि ओंटारियो विच इस फॉल सीजन विच तुसी की कर सकते हो। लंबी सैर, खूबसूरत फॉल्स, फसलां दी कटाई, कॉन्सर्ट, आर्ट गैलरीज ते वाइन टेस्टिंग, जां फिर पतझड़ च डिगे हुए पत्तियां नूं निहारन लई एक लॉन्ग ड्राइव दा मजा ले सकते हो। क्यों ना एक छोटे ट्रिप नूं थोड़ा होर लंबा कीता जाए। 30 सेकंड दा समां घट है ते फॉल दा मौसम भी, मिस ना करो ओंटारियो स्टेकेशन ते 20% बैक लैण दा मौका। एक प्लान बनाउण दा समां है, विजिट करो destinationontario.com।
टोरंटो विखे खालिस्तान रेफरेंडम दीआं वोटां दे पहले सेंटर विच रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठ तों बाद हुण खालिस्तान रेफरेंडम दे दूजे पड़ा दीआं वोटां 6 नवंबर दिन ऐतवार नूं मिसीसागा दे पॉल कॉफी अरीना ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਤੇ ਗੋਰਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2669।
ਲਓ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 905-874-7171।
बहनों और भाइयों, इस ऐलान को जरा सुनिए ध्यान से।
यानी और पैसे जाने वाले हैं?
नहीं मेरे प्यारे, पैसे तो आने वाले हैं।
और पैसे मगर कैसे?
एक इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है नया प्लान, आपने पे करना है 20 साल, एज 65 पे कंपनी गारंटीड 50% ऑफ द प्लान वैल्यू आपको दे देगी वापस। आपकी रिटायरमेंट सेट खुदा न खास्ता डेथ की सूरत में 100% ऑफ द प्लान वैल्यू क्लेम की सूरत में फैमिली के पास।
अरे ये तो बहुत ही आसान है।
बिल्कुल, फोन करें और पता करें कि आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। और याद रहे, ये है एक बड़ी लिमिटेड टाइम ऑफर। कॉल मी 905-607-5000। मैं हूँ कौन?
फजल वदूद
फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
Ultimate hearing solution, no obligation, complimentary hearing test.
HearMax Hearing Center, call Shiraz 416-792-8792.
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate hearing solution, 416-792-8792.
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक। ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
Spirit Mickey Menswear. Three elements that represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom suiting and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wool sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19. 20 Mississauga. Call 905-670-3388.
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस,
गारंटी ऑन लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
एशियन फूड सेंटर दिया सारिया ही लोकेशंस ते 3 अक्टूबर तो 16 अक्टूबर तक करवा चौथ सेल लग चुकी है. करवा चौथ थाली, मेहंदी, मिठाइयां, मठे, वैरायटी ऑफ बैंगल्स, सुहाग एंड पूजा आइटम्स ते बहुत सारे इन स्टोर स्पेशल्स भी. ताजा आटा 11.99 ईच, 300 ग्राम खालसा पनीर 3.99, 4 पाउंड ब्लैक चना 4.99 विच. हुण तुसी अपनी सहूलत लई afcgrocery.com ते भी अपनी ग्रोसरी ऑर्डर कर सकदे हो. सम कंडीशन अप्लाई. एशियन फूड सेंटर 4167403262.
Mesmerized Optical, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerized Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
आहो जी, आज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु. वापस आ गए हम सर, और अब हम डायरेक्ट ले चलेंगे. डायरेक्ट, इन्होंने कहा कि डायरेक्ट कोई चीज नहीं होती, डायरेक्ट होता है. तो जी डायरेक्ट एक साहब भी मिले थे मुझे ना, उसमें अभी एक कुछ पिछले हफ्ते में कई फंक्शंस में गया, तो वो वहां पर पता लगा कि वो कहने लगे कि यार ये वो जो उनका जो एक इंसाइक्लोपीडिया है नया वाला, वो शाजे जी का, जो बात करती हैं चकर निचकुर और ये वो सारी चीजें, तो आप लोग ने डिक्शनरी चेंज कर दी. हमने कहा हाँ जी, अंग्रेजों ने हम पे 100 साल हुकूमत की और उसके बाद जो है वो हमारी उर्दू, हिंदी, पंजाबी सब उन्होंने खराब कर दी. अब हमारा वक्त आया है. तो हमने तो आप देखिएगा साहब, डायरेक्ट वायरेक्ट कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट. हाँ जी, बाइसिकल क्या होती है?
अस्सलाम वालेकुम. पहले तो
ओ
अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई. ये यानी कि आप जो है ना, वैसे सही अरफा बाजी कह रही हैं, आप अपने दीन से हटते जा रहे हैं और हमारा भी इखलाक खराब कर रहे हैं. लेकिन हमारा इखलाक अभी तक खराब नहीं हुआ. अस्सलाम वालेकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातहु. कैसी
हैं? वालेकुम सलाम. मैं वैसी हूँ जैसे कल थी, आज भी वैसे हूँ. दवाई जारी है, कोई असर नहीं हुआ. कोई खास उसका असर नहीं हो रहा क्योंकि ये कनेडियन दवाई है. कनेडा की दवाई हमारे
नहीं, मैंने कह दिया आप पाकिस्तानी दवाई ला दूंगा.
अब ठीक है, तो कनेडा की
पाकिस्तानी दवाई ऐसे खड़ी हो जाएंगी आपके बस.
मैंने दौड़ना शुरू कर देना पाकिस्तानी दवाई खाने के साथ
ही. ठीक है जी,
ठीक है ना जी,
ठीक हो गया
जी, बिल्कुल ठीक है,
ठीक हो गया जी.
तो हाँ जी, अब बताएं क्या पूछ रहे थे आप.
मैंने कहा था कि डायरेक्ट नहीं होता, क्या होता है
डायरेक्ट,
और बाइसाइकिल नहीं होती, क्या होती है
साइकिल, बाइसाइकिल. टाइम नहीं होता, होता है टाइम. ठीक है जी,
तो अंग्रेज रो रहा है.
फैसिलिटी नहीं होती, फैसिलिटी याद होती है.
हाँ, अब वो हाँ. जो है अंग्रेज रो रहा है.
रोने तो 250 इयर्स हमारे पे इतने जुल्म किए, हमारे बादशाह को जो है रंगून भेज दिया, उसके बच्चे बेचारों की आंखें निकाल दी, तो अब हम इनकी जबान भी नहीं बिगाड़ सकते, इतना भी हमारा हक नहीं है.
है जी,
हम यही बदला ले सकते हैं. क्योंकि नोबेल प्राइज हम कोई जीत नहीं सकते.
तो बस हमने
कर तो हमने ये बदले लेने,
हमारा थाई आया ये.
हाँ, है जी, अंग्रेज जो है ना उसकी अंग्रेजी खराब करनी है हमने.
थोड़े दिनों के बाद वो भी हमारा वो समोसा तो आ गया ना इसके अंदर.
हाँ, बिल्कुल,
उनकी डिक्शनरी में समोसा आ गया है. हाँ, और बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो उनके
फैसिलिटी याद आएंगी. अभी अभी जब नई डिक्शनरी आएगी ना ऑक्सफोर्ड की, उसमें फैसिलिटी नहीं होगा वर्ड, उसमें होगा फैसिलिटी याद.
फैसिलिटी याद,
यस, ये हो गया जी. और जो कनेडा होगा ना उसके कैनेडा वाली स्पेलिंग CANADA नहीं होएगा.
हाँ जी, हाँ
जी. जब नेक्स्ट आएगी डिक्शनरी उसमें लिखा होगा कनेडा की तरह CANAYDA. कनेडा है जी.
गया जी.
आहे.
अंग्रेज तुम जब तक नहीं रोएगा ना
और अपन तुम्हारे को रुलाएगा,
अपना किए हुए पे शर्मिंदगी और माफी नहीं मांगोगे ना तो हम ऐसी इंग्लिश को खराब करते रहे।
हाँ, तुम्हारी सैकल की सैकल करेंगे हम।
टीम हमारे पास बहुत कम है,
बहुत ही कम टीम रह गया जी, बहुत ही
टीम हमारे पास बहुत कम है। न्यूज़ें ज्यादा है तो अब न्यूज़ें की स्पेलिंग क्या है? NEWAZZS
बल्कि AIN न्यूज़ें, NEWZAIN न्यूज़ें।
न्यूज़ें हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हम अब न्यूज़ों की तरफ चलेंगे।
हाँ जी, हाँ जी,
न्यूज़ें की एक और है न्यूज़ों।
हाँ,
तो न्यूज़ों की तरफ
प्लूरल है ना, प्लूरल है।
अच्छा, प्लूरल है
न्यूज़ों। और वैसे भी अब इधर हम तो सिखा नहीं सकते ना कि कौन सा जो सेंटेंस है वो नाउन है और कौन सा वर्ब है, तो ये अब आपको खुद खुद समझना पड़ेगा जैसे जैसे हम बोलेंगे।
अगर नहीं आया तो किसी अंग्रेज से पूछ लेना।
हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे माजिद भाई, पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहुत मुबारक आपको, कल का जो इवेंट था बड़ी लोगों ने तारीफ की, आपने और डॉक्टर मुर्तजा ने कंडक्ट किया उसको बहुत।
यू आर पार्ट ऑफ इट, यू आर हम सारे। हाँ जी, यू आर वन, क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ कई दिन लगाए, मुझे पता है कई दिन लगाए, एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स बिहाइंड द फोन एंड ईमेल्स एंड एवरीथिंग एल्स एंड यू put everything together.
Bas, Allah ka shukr hai.
Credit goes to you.
Thank you.
That was a very good effort on your behalf, and I congratulate you first.
Thank you very much. Congratulations hamari sari team ke liye. Kal ji humne kiye the debates yahan pe organize ki thi, municipal elections jo aa rahe hain October 24th ko, to uske liye takriban 30 hamare paas jo the different candidates aur har jagah se, Scarborough se, Markham se, Milton se, Hamilton se, ट्रोनो से, मिसिसागा से, ब्रैम्पटन से, हर जगह से आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड देयर वर 30 ऑफ देम। और हमारा फॉर्मेट ये था कि हम 6-6 लोगों को लेके और उनके साथ आप और डॉक्टर मुर्तजा उसको लीड कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो दैट वेंट वेरी वेल एंड पीपल वर वेरी हैप्पी। और उन्होंने 770 की हॉस्पिटैलिटी का बड़ा शुक्रिया अदा किया और द वे दे वर, उन्होंने कहा थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।
वी लाइक टू थैंक ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द बिजी टाइम, बहुत बिजी टाइम होता है, उसके बावजूद वो यहाँ तशरीफ लाए और आके आपकी इन्विटेशन पे इधर आए वो, और दैट वॉज सो नाइस ऑफ देम एंड आई विश देम नथिंग बट ऑल द बेस्ट।
और अब हम एक स्पेशल और इस तरह की ट्रांसमिशन करेंगे जो कि इलेक्शन वाले दिन जो अक्टूबर 24th को 24 तारीख को जो होगी, तो उस दिन हमारे सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट होंगे वो सारे बैठेंगे और इसके ऊपर जो एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि किस किस वार्ड से, किस किस इलाके से, सिटी से, टाउन से, कौन कौन जीत सकता है, कौन आगे चल रहा है, तो वो भी हमारी मैराथन ट्रांसमिशन होगी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ वैसे ही जुड़े रहें। ठीक है जी,
ठीक है।
अच्छा जी, हम अपनी न्यूज़ शुरू करने हैं। अच्छा जी, हमारी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी वो डीसी के अंदर हैं और वहां पे ये यूएस स्कॉलर्स और स्टेक होल्डर्स जो थे ऑन ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, वहां पे उनसे बात कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है या कि जो वर्ल्ड डेमोक्रेसीज हैं उनको हर वक्त का खतरा है और उनको बचाने की जरूरत है, और फ्री ट्रेड और प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड वैल्यूज, इनकी बात करने की जरूरत है। उन्होंने याद कराया लोगों को कि 33 पहले जब बर्लिन वॉर गिरी थी और उसके बाद फिर अब जो ये रशिया के अंदर ने वॉर शुरू की है यूक्रेन से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सेक्रीफाइसेस थी, तो ये सब चीजें उन्होंने कनेक्ट करते हुए कहा कि इन तमाम चीजों से हमको सीखने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसी जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे कि वर्ड उन्होंने बड़ा सख्त यूज किया, ट्रिनिकल रशिया, रशिया को टायरेंट का, यानी कि उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं ये हमारी डेमोक्रेसीज के लिए खतरा है, उनको खराब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम रेजोल्यूटली इनके अगेंस्ट खड़े रहें, और हमको चाहिए कि हम ऑयल और नेचुरल गैस के जो दूसरे हैं सोर्सेज उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और अपनी इकोनॉमीज जो है उसको स्ट्रेंथन करें। बहुत ही हार्ड हिटिंग इनका था, काफी लंबी इनकी थी जिसमें रशिया को उन्होंने काफी खींचा। यहां कनाडा में जी पार्टी क्यूबेकवा के जो लीडर हैं एक पॉल सेंट प्रे प्लेमोंडॉन्ट, उन्होंने कहा है जी कि मैं दो ओथ्स नहीं ले सकता। वो अभी अपनी सीट जीते हैं मॉन्ट्रियल राइडिंग से कमिल लॉरेन अक्टूबर 3rd को, तो उनको जब कहा गया कि अब तो आप लेजिस्लेशन में जा रहे हैं तो पहले आप क्राउन को का ओथ लेंगे और फिर आप क्यूबेक का ओथ लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम जो अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे लोगों ने हमें वोट दिया, तो मैं किंग का ओथ क्यों लूं। تو میں کنگ چارلز تھری جو ہے اس کا میں اوتھ نہیں لوں گا. لیکن اب پتہ نہیں ہے کہ ان کو پھر لیجسلیشن میں بیٹھنے بھی دیا جائے گا کہ نہیں, کیونکہ یہ جیتے تو ہیں سیٹ ویسے, لیکن اگر انہوں نے کنگ کا اوتھ نہ لیا اور صرف کہا کہ
تین ممبرز ہیں
جی تو ان کو اور بھی پھر جوائن کیا. یس
تین ممبرز الیکٹ ہوئے ہیں وہاں پر
جی جی جی,
تینوں نے کہا ہے کہ جی ہم
ہاں, تو جب انہوں نے بات کی تو باقی دو نے بھی پھر ان کو جوائن کیا تو انہوں نے بھی کہا. تو اب آل ٹوگیدر یہ تین پارٹی کیوبیک کے جو لوگ ہیں, اور یہ وہ پارٹی ہے جو کہ چاہتی نہیں ہے کہ کینیڈا کے ساتھ رہے کیوبیک, تو ہاں سیپریٹسٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کنگ کو سلام ولام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اب اکٹوبر 21 کو اب انہوں نے سورن دل بھی سورن ان, تو اب پتہ نہیں ہے کہ کیسے ان کو کیا جائے گا. اچھا جناب, ٹی ٹی سی نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ کچھ چینجز لے کر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے لیے ہم یہ جو ہے 506 کارلٹن اسٹریٹ کار جو ہے اس کو ہم ہٹا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو ہے دس از بٹوین آسنگٹن ایونیو اینڈ پارلیمنٹ اسٹریٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو ہم اب ختم کر رہے ہیں یہاں سے, اس لیے کیونکہ ٹائم بے تاشا ایک تو لگ رہا ہے نمبر ون, نمبر دو یہ کہ ہم ان کے انفراسٹرکچر اپ گریڈز لا رہے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے انہوں نے جو جتنے بھی ٹرانزٹ یوزرز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ اب آپ جو ہے ایدر 505 ڈینڈس یا کہ 506 کارلٹن اسٹریٹ کار جو ہے ایٹ ڈینڈس اسٹریٹ اس کے اوپر آپ جو ہے ڈائیورٹ اپنے آپ کو کریں, کیونکہ یہ جو علاقے ہیں یہ جس طرح کے جو اس کے آسنگٹن ایونیو کے آس پاس ہیں وہ کام نہیں کریں گے, وہاں پہ اپ گریڈیشن شروع ہو گئی ہے اور ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں یہ جو کارز اینڈ اسٹریٹ کارز ان کو. تو آپ پلیز ان کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں ان کی ٹی ٹی سی کی, تو آپ کو اور ڈیٹیلز ملیں گی. کینیڈا پوسٹ نے جی پارٹنرشپ کی ہے ٹی ڈی کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ہم اسٹیمپس اور پیکجز ہی جو ہے وہ ڈلیور نہیں کریں گے بلکہ ہم لونز بھی آفر کریں گے. اس کا نام ہے مائی منی, کینیڈا پوسٹ کی جو نئی اسکیم ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے اپنے امپلائیز کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ اگر لونز اپلائی کرنا چاہتے ہیں آن لائن یا کہ بائی فون تو آپ ٹی ڈی کی ہیلپ لے سکتے ہیں, اور ٹی ڈی آپ کو ہیلپ کرے گا اپلیکیشن بھرنے میں اور ڈیسیجن بنانے میں, اور یہ جو ہے آپ کو پرسنل لونز بھی دیے جا سکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام $1,000 اینڈ اپورڈز, اور ان کی جو فلیکسیبل ری پیمنٹ ٹرمز ہیں بینک کی ٹی ڈی کی وہ آپ کو ہیلپ کریں گی. تو دے آر یو نو موونگ ان ٹو اے ڈفرنٹ ٹیریٹوری ناؤ کینیڈا پوسٹ جو ہے. آر بی سی کے جناب اکانومسٹ, پتہ نہیں مائز بھائی ان کو فیئر کتنے ملین دیے ہیں, انہوں نے جناب آج کہا ہے چونکہ ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے اس لیے فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر جو ہے اس کے اندر ریسیشن اس ملک میں آ سکتا ہے, اور کینیڈا جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے, خاص طور پہ جو لوور انکم گروپ ہے وہ بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوگا, اور پرائسز بڑی ہائی ہو گئی ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بہت اوپر چلے گئے ہیں, تو ہر ہاؤس ہولڈ کو تقریباً $3,000 اور جو ہیں وہ لیس ہو جائیں گے اس کی بائنگ پاور میں, یعنی کہ اور زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے یا کم ہو جائیں گے بائنگ پاور میں سے, اور اس میں جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہٹ ہوئے گا. اور اس نے کہا جی کہ صرف جو ٹریول اور ہاسپٹیلٹی جو سیکٹرز ہیں وہ ٹھیک رہیں گے, اور جاب لیس جو ریٹ ہے وہ جو اس وقت 5.25% کرتا ہے وہ 7% کو ہٹ کرے گا.
صحیح,
تو یہ جناب بڑی خطرے میں ناک چیز ہے. ایران کے اندر جناب کانسٹنٹلی جو ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اور آج تو آسلو بیس جو ایران ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس نے کہا ہے کہ نیشن وائڈ یہ جو پروٹیسٹ 3 ویک سے ہو رہے ہیں جو کہ شروع ہوئے تھے ماسا امینی کے ڈیتھ کے بعد 16 سپٹمبر سے, اس کی وجہ سے اب اتنی ساری جو ہیں 108 آل ٹوگیدر ڈیتھس ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے کہا جی کہ 93 جو ہیں وہ تو ہوئی ہیں زاہدان کے اندر, اور پھر اس کے علاوہ جو ہیں مزندرن کے اندر 28 ہوئی ہیں, کردستان کے اندر 14, 12 گیلان میں, اور ویسٹ آذربائیجان میں بھی 12, اور 11 تہران میں ہوئی ہیں. لیکن جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پروٹیسٹرز جو ہیں ہمارے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے بندے بھی مرے ہیں. لیکن دوسری طرف سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ صرف عورتوں کو بلکہ بچوں کو بھی سکولوں سے اور اسٹریٹ سے جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو بند کر رہے ہیں. تو کافی زیادہ چیزیں جو ہیں بھڑک گئی ہیں ایران کے اندر بہت زیادہ, اور یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں ان میں لڑکیاں جو ہیں بالکل ہیڈ سکارفز نہیں پہن رہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اب ہم پہنیں گے بھی نہیں. رائٹرز کی آج ایک رپورٹ ہے جی, اور اس کے مطابق جو ڈبلیو ایچ او ہے اور یورپین سینٹر فار ڈیزیز پریونشن کے ڈائریکٹرز ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کووڈ کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے. ڈبلیو ایچ او کے جو ڈائریکٹر ہیں یورپ کے لیے انہوں نے, اور ان کا نام ہے جو جنہوں نے کہ یہ بات کی ہے الانگ ود یورپین سینٹر فار ڈیزیز پریونشن آنڈریا امون کے ساتھ, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آ رہی ہے पेंडेमिक, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो केसेस हैं वो बेतहाशा ऊपर चले गए हैं। वो कहते हैं जी जो वीक ऑफ अक्टूबर 2 था उसमें से लेके अब तक का जो वीक है उसमें 8% केसेस ऊपर चले गए हैं, और हेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है कि वैक्सीन और बूस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल इन यूरोप जो हैं वो अभी भी वैक्सीनेटेड हैं। तो उनको इन्होंने अर्ज किया है दोनों ने, ये जो WHO के भी डायरेक्टर हैं, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन के डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने कहा जी कि आप लोग प्लीज फौरन ना सिर्फ ये कि कोविड वैक्सीनेशन लगवाएं, आप फ्लू वैक्सीनेशन भी लगाएं, इसलिए कि इन्फ्लुएंजा का सीजन जो है वो आ रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक बाइडन साहब ने आज बहुत ज्यादा जो है सख्ती से KSA के साथ यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ बात करते हुए कहा कि जो तुम कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और कॉन्सिक्वेंसेज किस चीज के लिए, आपको पता ही है कि ये जो ओपेक प्लस है विच इज लेड बाय रियाद जिसके के अंदर रशिया भी है, उन्होंने कहा था कि हम अपनी जो है ऑयल कैपेसिटी को कट कर रहे हैं, जिसके के ऊपर इन्होंने बड़ा सख्त जो है बुरा मनाया था बाइडन साहब ने, और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने अब बाइडन साहब को कहा है कि KSA के साथ आप अपना बिल्कुल जो है फ्रीज कर दें कोऑपरेशन। डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ऑफ कनेटिकट जो है वो और रिपब्लिकन रो खन्ना जो है कैलिफोर्निया से, उन्होंने आज एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बाइडन साहब कहा है कि सऊदी अरेबिया को ये जो आप आर्म्स की सेल्स देते हैं ये फौरन बंद कर दें और कोऑपरेशन भी बंद कर दें, इसके अलावा रिपेयर्स और स्पेयर पार्ट्स और बाकी जो सपोर्ट सर्विसेज सऊदी अरेबिया को देते हैं वो फौरन बंद कर दें। CNN को एक इंटरव्यू देते हुए बाइडन साहब ने कहा कि मैं इन सब चीजों के ऊपर गौर कर रहा हूं और मैं कांग्रेस के सामने ये लेकर आऊंगा, मैं देखूंगा कि कांग्रेस इसके ऊपर क्यों क्या कहती है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो आर्म्स डील्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 हजार मिलियन की नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रन करती हैं। तो अब एक मुल्क जो कि ऑलरेडी रिसेशन में भी जा रहा है और उसके जो है वो लोगों की हालत भी खराब होती जा रही है, तो वो अब ये नहीं रिस्क ले सकता कि अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सेल्स भी रोके। बहरहाल वो उन्होंने आज बड़ी धमकी भी दी है, उन्होंने कहा कि मैं अब जो है ये जो कुछ किया सऊदी अरेबिया ने और ओपेक प्लस ने उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और इनको हेड तो तीन कंट्रीज ही ज्यादातर वो जो है जो ड्राइव करते हैं, एक तो कतर है, UAE है और सऊदी अरेबिया है, बट ओपेक प्लस एक्चुअली इज लेड बाय सऊदी अरेबिया। सो इसलिए उन्होंने आज सऊदी अरेबिया को धमकी दी, और उसके अलावा जाहिर है कि फिर बाकियों के ऊपर भी इसका असर होगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन साहब ने आज यूरोपियन यूनियन को कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम वन जो है वो तो बंद हो गई है, लेकिन ये जो नॉर्ड स्ट्रीम टू है उससे मैं आपको गैस दे सकता हूं। अच्छा, इसके लिए आप जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया है, उसकी वजह यह है कि आज तक नॉर्ड स्ट्रीम वन से ही जर्मनी को और आगे जर्मनी से आगे फिर जो दूसरे इलाके थे उनको जो है वो दी जाती थी, ये नॉर्वे को, डेनमार्क को और इन स्वीडन को, इन सबको गैस दी जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आज तक नॉर्ड स्ट्रीम टू जो है उससे तो आज तक हमने लिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी जो है वो पाइपलाइन आपकी प्रॉपर है और हमारे तक पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम वन के बारे में आपने कहा था कि इसके अंदर एक्सप्लोजन हो गया, जिसको कि वेस्ट ने कहा था कि ये उन्होंने सेबोटाज किया है। रशिया कह रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम टू भी जो है वो भी बाल्टिक सी के अंदर है, वही सिस्टम है, वहीं से आता है, और हम आपको 27 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर गैस दे सकते हैं। तो अब इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है यूरोप की, वो कह रहे हैं कि जी अब हमें पता नहीं है कि हम ले सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन इज ही गोना एक्सेप्ट द डॉलर्स और इज ही
गोना नहीं, रूबल्स डील तो रूबल्स के अंदर होगी, डॉलर्स तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जर्मनी ने वैसे ही कह दिया कि अगर नॉर्थ स्ट्रीम वन नहीं है तो नॉर्थ स्ट्रीम टू का जो पाइपलाइन है उससे तो हमने लेना ही नहीं है। तो अब देखेंगे इसमें क्या होता है। अच्छा जी, ये जो सारी चीजें अब ऑयल और गैस पे चल रही हैं, इसी में आज पुतिन साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है UAE के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ, जो कि ओपेक प्लस की मीटिंग के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में आए हुए थे, और उनकी पुतिन साहब से मुलाकात हुई है। इस पे जो है पुतिन साहब ने बड़ा तारीफ की है UAE की, हमारे साथ आप खड़े हुए हैं, और MBZ जो उधर गए हैं, यानी कि एक तो मोहम्मद बिन सलमान है ना, उनको कहते हैं MBS कहते हैं, ये मोहम्मद बिन जायद हैं तो इनको MBZ कहते हैं। तो ये MBZ को उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि हम दोनों जो है हमारा डिसीजन किसी एक मुल्क या किसी एक रीजन के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ एंश्योर करना चाहते हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स जो हैं उसके अंदर रिसोर्सेज कंज्यूमर्स को मिलते रहें और वो स्टेबल रहें और सप्लाईज भी जारी रहें। तो इसलिए हमने ये कदम उठाया कि हमने ये اتنی زیادہ جو ہیں یہ کٹس کی ہیں. یو اے ای کی جو اسٹیٹ نیوز ایجنسی ویم ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ایم بی زیڈ کی جو ملاقاتیں آج ان کے ساتھ ہوئی ہیں پوٹن صاحب کے ساتھ, اس میں وہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں گلوبل پیس اور اسٹیبلٹی, اور انہوں نے یہ بھی ان کو کہا ہے کہ آپ کی ٹینشنز جو یوکرین کے ساتھ چل رہی ہیں اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے آپ سالو کریں اور اس کو ریڈیوس کریں. تو بہرحال اب یو اے ای بھی جو ہے وہ بیڈ بکس میں آ گیا امریکہ کی, تو اب پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کریں گے امریکہ میں. واشنگٹن پوسٹ کی آج بڑی ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور یہ بھی اگین آئل اینڈ گیس پہ ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی اب چونکہ یورپ کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گیس اور آئل تو چاہیے کیونکہ ونٹر از جسٹ راؤنڈ دا کارنر, ان فیکٹ اٹ ہیز کم آلریڈی رائٹ ان سم پلیسز, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب یہ ڈفرنٹ جو ہیں علاقے اب ڈھونڈ رہے ہیں, اس میں سے ایک علاقہ جو ہے افریقہ کی ویسٹرن کوسٹ بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پہ کنٹریز لائک سینیگال اور موریتانیا جو ہے 15 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس پروڈیوس یہ کر سکتی ہیں, لیکن اور جو جرمنی ہے اس نے کہا بھی تھا کہ ہم 2019 میں کہ ہم اس کو یوز کریں گے, لیکن دا سسٹم دا کوشچن از کہ یہ جو لیکویفائڈ گیس ہے یہ کیا انرجی سیکیورٹی یورپ کو دے سکتی ہے اور کیا افریقہ سے یہ اتنی بڑی پائپ لائنوں کا انفراسٹرکچر ان پلیس ہے کہ یہ یہاں پہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ایئرز. یا واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک تو یہ ڈیلز تو فوراً کٹ کرنے کو تیار ہیں اور یہاں کے جو بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں جیسے کہ نائجیریا میں اور موزمبیک وغیرہ میں انہوں نے اپنے جو علاقوں کے جو نیڈز ہیں ان کو فوراً کٹ کر دیا ہے جب ان کو پتا چلا ہے کہ جی یورپ اب ہماری طرف سے دیکھ سکتا ہے اور ہم سے جو ہے ڈیلز کر سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ نہ صرف یہ کہ ایٹ ہوم ان کو بڑی سخت کرٹیسزم کی جا رہی ہے بلکہ دنیا بھی یورپ کا برا حال دیکھنے کے باوجود بھی ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ جب تمہارے اپنے ملک میں اتنی زیادہ انرجی کا کرائسس ہے تو تم یورپ کو کیسے بیچ سکتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے سیکیورٹی رسک بہت ہیں, جیسے کہ موزمبیک کے اندر جو ہیں آرمڈ گروپس ہیں بہت سارے جو کہ ان کی پائپ لائنز کو سبوٹاج کر سکتے ہیں, تو سیکیورٹی رسک ہے. اسی طرح نائجیریا جو ہے اس کے اندر تھیفٹس کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ جو پائپ لائنز لگاتے ہیں اس پائپ لائن میں ایک اور سب پائپ لائن لگا کے اپنی طرف ڈائیورٹ کر لیتے ہیں وہ گیس کو,
چوری کر لیتے ہیں
تو تھیفٹس ہیں وہاں پہ جی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی, واشنگٹن پوسٹ کہہ رہی ہے کہ یورپ دیکھ تو رہا ہے ویسٹرن افریقہ کی طرف, لیکن ایک تو نمبر ون جو ٹو پٹ دا انفراسٹرکچر ان پلیس افریقہ سے یورپ لانے میں اس کو سالوں لگیں گے, پھر سیکیورٹی رسک ہیں, پھر تھیفٹ کے رسک ہیں, تو ہے تو بے تحاشا گیس ان کے پاس اور لیکویفائڈ گیس جو ہے وہ تو بیٹر بھی ہے ادروائز بھی, لیکن اب یہ ان کو پہنچے گی کیسے. تو یہ یورپ جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے افریقہ کی طرف,
قطر سے جب انہوں نے ڈیل کی ہے نا تو قطر سے انہوں نے ڈیل جی ہے شپمنٹ کے تھرو کی,
جی 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 جی
وہی لیکویڈ گیس ہے, مگر وہ پائپ لائن میں تو بہت زمانہ لگے گا ان کو, تو فور دا امیڈیٹ انہوں نے جو ہے وہ شپ کے ذریعے وہاں پہ یہ گیس لے کے آ رہے ہیں.
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں افریقہ سے لانے میں یہ جو ہیں دے آر ایٹ دا ٹاپ, تو اس لیے اگر وہاں کی لوکل کمپنیاں اپنی ڈومیسٹک نیڈ کو کٹ کر بھی لیتی ہیں تو بھی جو چیلنجز ہیں وہ مطلب انفراسٹرکچر تو ایک بات ہے, چیلنجز بے تاچا. اچھا جی, فوربس جو ہے فوربس آپ کو پتا ہے فوربس میگزین پیاری پیاری خبریں لاتا ہے آپ کے پاس, دنیا کے امیر ترین بندے, دنیا کی امیر ترین عورتیں, دنیا کی ایکسپینسو ترین جیولری, دنیا کی ایکسپینسو ترین کڑیاں ہیں جی, پانچ لاکھ جڑے پاؤنڈ دیا کڑیاں. اچھا جی, تو یہ اب آج انہوں نے جو رپورٹ نکالی ہے ورلڈز بیسٹ امپلائر 2022, اور اس میں انہوں نے مل کے کیا ہے اسٹیٹسٹیکا جو ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے سروے کیا ہے 150,000 فل ٹائم اینڈ پارٹ ٹائم ورکرز ان 57 کنٹریز. ان سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں کیا آپ اپنے فیملی اور فرینڈز کو ریکمینڈ کریں گے, اس کی بیس پہ دے ہیو کم اپ ود دا فرسٹ ٹاپ کمپنیز. اور آپ کو یو ول بی سرپرائز ٹو نو ماجد بھائی کہ ٹاپ کمپنی پتا کون سی تھی 2022 کی, سیمسنگ. سیمسنگ از نمبر ون, مائکروسافٹ از نمبر ٹو, آئی بی ایم از نمبر تھری, الفابیٹ از فور, ایپل از فائیو, ڈیلٹا سکس, بی ایم ڈبلو 13, ایڈیڈاس 16, اور اتنی بڑی یہ جو کمپنی ہے جو ساری دنیا کو آرمز بیچتی ہے اور بڑی اس کی اچھی ریپوٹیشن بھی امریکہ کی, لاکڈ مارٹن یہ تک 11 نمبر پہ ہے, اینڈ دین آل دا ادر کمپنیز. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6 جو کمپنی ہے یہ کیا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں جی جینڈر اکویلٹی ہے, بہت اچھے سے پیش آتے ہیں, ان کے جو ٹرمز ہیں بہت اچھے ہیں, ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں, ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ان کی ٹریننگز کرتے ہیں, ان کو باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں ٹریننگز کرنے کے لیے, نہ صرف اپنے کنٹری میں ہیں, پھر ان کو بونسز بہت دیتے ہیں, ان کی یعنی کہ لائف اتنی کوئی ایزی بنا دیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے جو کی تھی دنیا کی 800 کمپنیز کو فوربز والوں نے سروے کیا تھا.
ہم کو تو سروے نہیں کیا, 770 ایم
او ہم تو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں نا, ہمارے بعد ہے نمبر ون پہ سیمسنگ.
اچھا اچھا,
ہم ٹاپ پہ ہیں پھر نمبر, مطلب ہم نمبر ون نہیں ہے, ہم ٹاپ پہ ہیں.
ٹاپ پہ ہیں,
ہاں ہم ٹاپ پہ ہیں,
ٹاپ ٹاپ پہ,
ہاں ٹاپ پہ, سروں کو ٹوپی بنا رہے ہیں
ہم,
ہم ٹاپ پہ ہیں, پھر اس کے بعد ٹاپ کے بعد آتا ہے نمبر ون ٹو تھری.
ہاں اچھی بات,
سمجھا کریں. تو جناب یہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ فیسلٹیات انہوں نے اتنی دی ہوئی ہیں کہ لوگ ان کو چھوڑ کے جانے کا سوچتی نہیں ہے. ہیں جی, ایسا چکر ہے. ہاں جی بالکل. اچھا جی,
I'm surprised Amazon is not there.
امیزون کا بھی نمبر ہے لیکن ذرا نیچے ہے, کیونکہ امیزون نمبر 4 پہ تھا تو 4 پہ سے ہٹا دیا الفابیٹ نے اس کو, اس کی جگہ پہ الفابیٹ آ گیا ہے. امیزون از آن نمبر 7 اور 8 اب جو ہے, وہ کافی لمبی لسٹ تھی 800 کمپنیز, رائٹ. تو ایسے کر کے پہلے نمبر 4 پہ لاسٹ ایئر جو انہوں نے کیا تھا اس پہ تھا امیزون, اب الفابیٹ نمبر 4 پہ آ گیا, اس نے ہٹا دیا امیزون کا وہاں سے. اچھا جی, انڈیا نے آج جو ہے ایک, آپ کو پتا یہ تھوڑے دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا, ان کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے جو انیربال باغچی ہیں انہوں نے ایک ڈیمارش بھیجا تھا کینیڈا کو کہ بھئی آپ کے ملک میں بہت سارے جو ہیں وہ ہیٹ کرائمز جو ہیں چل رہے ہیں. تو اب انہوں نے ایک دوسرا ڈیمارش بھیجا ہے کینیڈا کو, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے آپ کی یہ جو آرگنائزیشن یہاں پہ سکس فار جسٹس کام کر رہی ہے جو کہ انڈیا میں 2019 سے بین ہے, یہ خالصتان کا اب دوسرا ریفرینڈم کرانے لگے ہیں. تو انہوں نے کینیڈا کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ یہی الیجلی گروپ شامل تھا جنہوں نے ایئر انڈیا فلائٹ 182 کو ان 1985 جو ہے بلو کیا تھا. اگر یہ نہیں تھا تو اس طرح کے جو ہے سکھ ملٹنٹس تھے جو کہ انہوں نے